Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mayayam Brahma Chaitanya Pratibimbanusangatah महत्कालपुमांस्य स्युः महत्वाद् अहंकृतिः। उस प्रधान में माया में असंग शुद्ध चैतन्य रूप ब्रह्म का जब प्रतिबिंब पड़ता है, माया में ब्रह्म चैतन्य का जब प्रतिबिंब पड़ता है, वेदांती लोग इस बात को कहते हैं कि माया में ब्रह्म चैतन्य का जब प्रतिबिंब पड़ता है, तब उस त्रिगुणात्मिका साम्य अवस्था व्यक्त प्रकृति में माया में क्षोभ उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। इसको यूं समझ लो, जैसे दूध रखा है गर्म करके, दूध से दही बनानी है, दूध तब तक दही नहीं बन पाएगा जब तक उसमें एक दो बूंद नींबू को नहीं डालोगे, या कोई या दूसरे दही को नहीं डालोगे। और दूध को पनीर बनानी हो, छेना बनानी हो, तो नींबू डालना पड़ेगा, और दही बनानी हो तो फिर जामुन, थोड़ा सा दही का अंश डाल देना पड़ेगा उसमें। यह उसका स्पर्श प्राप्त करते ही, संसर्ग प्राप्त करते ही, दही का संसर्ग प्राप्त करते ही दूध में एक विकार पैदा होगा, वो विकार का कारण बनेगा, वो दूध दही बन जाएगा। या फिर काल के निमित्त से वो दूध दही बन जाता है, कटोरी में रख लो दूध गर्म करके, शाम तक तो भले ही वो दही ना बने, कल तक तो चले जाए, देखो तो काल के प्रभाव से वह दही यानी दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है। इसी तरह मूल प्रकृति में ईश्वर चैतन्य परमात्मा का चैतन्य का जब प्रतिबिंब का प्रवेश होता है, संसर्ग होता है, तो उस चैतन्य के प्रतिबिंब के चलते उसमें एक विकार पैदा हो जाता है, और वह विकार ही प्रकृति से कार्य के रूप में महत्त्व को उत्पन्न करने में हेतु बनता है। मायायां ब्रह्म चैतन्यं प्रतिबिंबानुसंगतः महत्कालपुमांस्य स्युः महत्त्वात् महत्तत्वात् अहंकृति। तो पहला कार्य महत्त्व समष्टि बुद्धि, उससे अहंकृति। अब आगे सृष्टि कैसे होती है, ये प्रक्रिया है। वेदांती लोग कहते हैं कि वो नहीं नहीं वो केवल अकेले ईश्वर से सृष्टि बन गया, जबकि प्रकृति कम से कम आवश्यक है। तामसात शिव अहंकारात खानिलाग्न्यंब भूमय शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसो गंधोप्यनुक्रमात। तामसिक अहंकार द्वारा, त्रिविध अहंकार मैंने बताया, तमोगुण भाव के अंश से, प्रकृति के तमोगुण भाव के अंश से तामसिक अहंकार की उत्पत्ति, तामसिक अहंकार के अंश से आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत यह अपंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। तामसात शिव अहंकारात खानीलाग्ने अंबुभूमयः, और ये कैसे हैं, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी क्रमशः शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसो गंध्योप्यनुक्रमात्। तो उस आकाश में शब्द गुण वाला आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श गुण वाला वायु की उत्पत्ति, रूप गुण वाला तेज की उत्पत्ति, रस गुण वाला जल की उत्पत्ति, और गंध गुण वाला पृथ्वी की उत्पत्ति, ये स्व स्व गुण विशिष्ट पंचमहाभूतों की उत्पत्ति तामसिक अहंकार द्वारा संभव है, अकेले ईश्वर द्वारा संभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर में गुण नहीं है। ईश्वर में, परमात्मा में न तमोगुण है, न रजोगुण है, न सत्वगुण है। गुण ही नहीं है तो फिर ये तत्त्व गुण वाले भूतों की उत्पत्ति कैसे संभव होगा? शुद्ध ईश्वर से, ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है। इंद्रियाण्यंच विषया भूतान्यपि ते गुणाः देवा सदा शिवश्चेन्द्रो रुद्रो विष्णु चतुर्मुखः। तुम जिसको शिव कह रहे हो वह तो प्रकृति में पहला क्षोभ महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार में तीन गुण विद्यमान हैं, उस तमोगुण के स्पर्श के चलते तमो अंश में जो पुरुष चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, उस तमोगुण के संसर्ग के चलते शिव उत्पन्न होता है। और तुम कहते हो शिव से जगत उत्पन्न होता है। लो जी, कहां से आ गया वो शिव? है महातत्व को किसने उत्पन्न किया? महातत्व को तो उत्पन्न किया प्रकृति ने पहले विकार के द्वारा, फिर उस प्रकृति महातत्व ने अहंकार उत्पन्न किया। अहंकार में जो तमो अंश है उस तमो अंश से पंच महाभूत, पांच गुण और साथ ही उस तमो गुण के अंश से शिव उत्पन्न हो गया। ये तो प्रकृति का तीसरा कार्य है जिसको तुम शिव कहते हो। तमो गुण के अंश से शिव होगा तामसिक, और जिसको तुम विष्णु कह रहे हो वह रजोगुण के अंश से उत्पन्न हुआ हुआ है, राजसिक अहंकार। तामसिक अहंकार से शिव, राजसिक अहंकार से विष्णु, नहीं, सात्विक अहंकार से विष्णु और राजसिक अहंकार से ब्रह्मा। तो तुम जिसको त्रिदेव बोल रहे हो, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तो प्रकृति का कार्य महत्त्व, महत्त्व का कार्य त्रिविध अहंकार, उसका कार्य है ये तीन। हाँ, अन्यथा तो तमोगुण न हो तो शिव शिव नहीं रहेगा, रजोगुण न हो तो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रहेगा, सत्वगुण न हो तो विष्णु विष्णु नहीं रहेगा, और त्रिविध पंचविध आकाश नहीं रहेगा, पंचविध विषय नहीं रहेंगे। देव सदा शिव चेन्द्रो रुद्रो विष्णु चतुर्मुख। इंद्र भी सब उसी से पैदा हुए, ये तो तमो गुण के अंश से। सात्विकात् स्याद् अहंकारात् अंतःकरणम् इन्द्रियम्। अब जीव कैसे उत्पन्न हुए? बोले उस सात्विक जो अहंकार, तामसिक अहंकार से तो आकाश आदि शब्द आदि और शिव उत्पन्न हुए, और ये जीव कैसे उत्पन्न हुआ? तो बोले उसी सात्विक अहंकार से सबसे पहले अंतःकरण चतुष्टय उत्पन्न हुए, और उसी से ज्ञान इंद्रियां पांच उत्पन्न हुए, उनके विषय तमोगुण से उत्पन्न हुए ज्ञान इंद्रियां के शब्द स्पर्श आदि, और खुद ज्ञान इंद्रियां उन विषय का ग्राहक ज्ञान इंद्रियां सत्वगुण से उत्पन्न हुए। सात्विकात् स्याद् अहंकारात् अंतःकरणम् इन्द्रियम् मनोबुद्धिहंकारः चित्तकरणमान्तरम्। ये चार भेद वाला अंतःकरण उत्पन्न हुआ, और उसमें ये साथ साथ ही ये चार धर्म भी उत्पन्न हो गए उसी अंतःकरण में से, संशय। तो सात्विक अहंकार से अंतःकरण पैदा हुआ, तो उसी अंतःकरण में संशय भी पैदा हो गया, उसी अंतःकरण में निश्चय भी पैदा हो गया, उसी अंतःकरण में गर्भ भी पैदा हुआ, और उसी अंतःकरण में स्मरण भी पैदा हुआ। तो संशय का संबंध अंतःकरण के मन के साथ जोड़ दिया, निश्चय का संबंध अंतःकरण के बुद्धि के साथ जोड़ दिया, गर्व का संबंध अंतःकरण के अहंकार के साथ जोड़ दिया, और स्मरण का संबंध अंतकरण के चित्त के साथ जोड़कर ये चार अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के धर्म के रूप में कार्य के रूप में ये संशय निश्चय गर्भ और स्मरण ये उन अंतकरणों के विषय उत्पन्न हो गए। ये इंद्रियों के विषय नहीं है। इंद्रियों के विषय क्या हो गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच ज्ञान इंद्रिय का विषय हो गए और अंतकरण के विषय नहीं है। अंतकरण के विषय क्या है? तो बोले संशय निश्चय गर्भ और स्मरण। गर्भ माने अभिनिवेश। तो क्या समझता है मुझे? मैंने मास्टरी की है, डॉक्टर किया है, पीएचडी की है, तो मुझे क्या समझता है? इसको कहते हैं गर्भ। यह अंतकरण के अंतर्गत का अहंकार का कार्य है, अहंकार का विषय है ये। उसी बात को और आगे स्पष्ट करते हैं। श्रोत्र तद्चुषी जिह्वा घ्राण संज्ञान ज्ञानेन्द्रियम विदु दिग्वात सूर्य वरुणासना सत्यो देवता स्मृत। उसी सात्विक अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रिय भी उत्पन्न हो गई और उसी सात्विक अहंकार से फिर इन पांच ज्ञानेन्द्रियों के देवता भी उत्पन्न हो गए। वो देवता क्या है? दिग देवता कान के, बात वायु देवता त्वचा के, सूर्य ये चक्षु के देवता, वरुण जिह्वा के देवता, अश्विनी कुमार ना सत्यु अश्विनी कुमार ये घ्राण के देवता। ये पांच देवता भी किससे उत्पन्न हुए? महातत्व से उत्पन्न हुआ हुआ त्रिविध अहंकार, त्रिविध में से सात्विक अहंकार से विष्णु और उसी सात्विक अहंकार से अंतकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार और उसी सात्विक अहंकार से संशय निश्चय गर्भ और स्मरण, उसी सात्विक अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां और उसी सात्विक अहंकार से उन ज्ञानेन्द्रियों के अधिदेवता पांच अधिदेवता ये भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। राजसात शिव अहंकारात कर्मेन्द्रिय समीरिण। अब तीसरा जो अहंकार है राजसिक अहंकार, उससे पांच कर्मेन्द्रियां उत्पन्न हुए और पांच समीर उत्पन्न हुए, वायु पंचवायु उत्पन्न हुए। देखो सृष्टि में यही तो सब है, इसके अलावा और क्या है? बोलो सभी आ गए कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए उस सृष्टि में, उसी में आ गए पृथ्वी वायु तेज और आकाश आ गए, उसी के अंतर्गत आ गए और उसी के अंतर्गत ये अंतकरण आ गए, उसी के अंतर्गत अंतकरण के विषय आ गए, उसी में आ गए ये सब देवता आ गए, इंद्रियां आ गई कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां पंच प्राण, और क्या चाहिए जगत में? यही तो जगत है ये सब के सब। कर्म इंद्रियाणि वाक्पाणी पादपायोपस्थकम् प्राणोपान समान चोदानव्यानो च वायवः भूतेषु पंचभिः प्राणैः चतुर्दशभिरिन्द्रियैः चतुर्विंशति तत्त्वानि सांख्यशास्त्रविदो विदुः। ये सब मिलाकर कार्य कारण पुरुष सबको मिलाकर ये 24 वस्तु ये जगत के पहले ये थे और अभी भी यही हैं और ये जगत का मतलब है कि यही 24 वस्तु के अंतपाती हैं। ये चतुर्विश संख्या तत्व के रूप में मानने वाले होने के कारण, संख्या के रूप में मानने के कारण उनको सांख्य कहते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी इसके बारे में कहते हैं आगे, ये श्लोक का अब अर्थ है। वेदांती अब उत्तर दे रहे हैं, अरे भाई तुम जिसको ये सब प्रक्रिया से बता रहे हो तुम सुन लो। सर्वे विकल्पा प्रागासन बीज अंकुर इवात्मनी। तुमने जितनी विकल्प हैं सामने रखी, पुरुष प्रकृति, पुरुष का प्रकृति में प्रतिबिंब से महत्त्व, महत्त्व के विकार से त्रिविध अहंकार, तामसिक अहंकार से आकाश आदि पंचभूत, तामसिक अहंकार से शिव रुद्र, सात्विक अहंकार से अंतकरण चतुष्टय, सात्विक अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां, सात्विक अहंकार से उन इंद्रियों के अधिदेवता, राजसिक अहंकार से पांच कर्मेन्द्रियां, उसी राजसिक अहंकार से पांच कर्मेन्द्रियों के अधिदेवता, उसी राजसिक अहंकार से पांच कर्मेन्द्रियों के कर्म आदान गमन विसर्जन बदन, ये कर्म विषय, और उसी से पंच प्राण। ये जो कुछ विकल्प तुमने बताई है, ये सारे के सारे विकल्प उसी सजातीय विजातीय सुगत वेदत्रय शून्य एक शुद्ध ईश्वर में पहले से ही विद्यमान थे। लेकिन कैसे थे? बीजस्यांतरिवांकुरो, ये बीज से पहला अंकुर उत्पन्न हुआ। सांख्यों की प्रक्रिया यही ना है, जैसे पहले से बीज से पहले क्या उत्पन्न होगा? अंकुर। और फिर उस अंकुर से क्या उत्पन्न होगा? दो पत्ते। फिर कालांतर में दो के जगह चार पत्ते, चार के जगह आठ पत्ते, आठ के जगह दस पत्ते, पत्तों में वो अंकुर बढ़ता जाएगा। फिर कालांतर में उन पत्तों की जड़ों में से फिर शाखाएं उत्पन्न होंगे, और शाखा के बाद फिर उपशाखाएं उत्पन्न होंगे, उसी में से हजारों पत्ते उत्पन्न होंगे, उसी में से हजारें हजारों उपशाखाएं उत्पन्न होंगे, और उसी में से हजारों फल लगेंगे, हजारों फूल लगेंगे। ये सब के सब का कारण एक ही है, बीज। लेकिन बीजावस्था में ये सारा का सारा वृक्ष अपने नाम रूप विकल्प के रूप में नहीं था, अविकल्प के रूप में था। विकल्प के रूप में नहीं था लेकिन अविकल्प के रूप में था। यदि बीज में वृक्ष अविकल्प के रूप में न होता, विकल्प के रूप में रहता है कहोगे, तो इतना छोटा सा बट बीज के अंदर इतना बड़ा बट वृक्ष का विकल्प कैसे समाएगा? तो विकल्प के रूप में तो नहीं, विकल्प शब्द का अर्थ जान समझ रहे हो ना, नाम और रूप, पत्ता एक नाम, पत्ता का रूप, इसलिए शाखा एक नाम, शाखा का रूप, फल एक नाम, फल का रूप, फूल एक नाम, फूल का रूप, ये नाम और रूप को विकल्प कहते हैं। जहां नाम और रूप व्यक्त नहीं हुआ है वहां निर्विकल्प कहते हैं। ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा में ये जगत किस रूप में था? निर्विकल्प के रूप में था, विकल्प के रूप में नहीं था। और विकल्प वही होता है जहां एक से दूसरा होता है, एक की अपेक्षा दूसरा होता है तो वहां विकल्प होता है, और जहां एक की अपेक्षा दूसरा है ही नहीं तो वो क्या हो गया? निर्विकल्प। निर्विकल्प हो गया, वस्तु एक ही है तो वहां निर्विकल्प हो गया, विकल्प उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, उसका कोई समानांतर नहीं है, उसका कोई सजातीय नहीं है, कोई उसका विजातीय नहीं है, कोई उसका स्वगत नहीं है, तो वो हो गया क्या? निर्विकल्प। जैसे आप अकेले हैं कमरे में, उस कमरे में आपके अलावा और कोई नहीं है, तो आप अकेले होने पर भी आप अकेले नहीं हैं, आप में स्वगत भेद विद्यमान है। आप में स्वगत भेद क्या है? आपका सिर है, सिर से भिन्न हाथ है, हाथ से भी नसीर है, ये एक ही में होने वाला ये विकल्प है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, स्वगत भेद, एक ही में भिन्नता सिद्ध होता है जहां, उसको स्वगत भेद कहते हैं। हाथ से सिर अलग, सिर से हाथ अलग, कान से नाक अलग, नाक से कान अलग, कान से हाथ और सिर अलग, कान से सिर और हाथ अलग, कान से नाक सिर हाथ मुख अलग। ये क्या है, एक ही में होने वाले भिन्नता को स्वगत भेद कहते हैं। क्या सृष्टि से पहले यानी वृक्ष उत्पन्न होने से पहले उसी बीज में इस प्रकार के शाखा पत्ते फूल है धड़ फल ये अलग अलग उसी बीज के अंदर विद्यमान थे स्वगत भेद के रूप में? स्वगत भेद के रूप में न होने के कारण उनको कहा निर्विकल्प। स्वगत भेद के रूप में होता तो सभी कल्प ही होता, निर्विकल्प नहीं होता। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम् प्राक निर्विकल्पम पुनः इदम् जगत। इस समय अलग अलग नाम रूप आदि के विकल्पों के रूप में प्रतीत होता हुआ ये जगत, इस रूप में प्रतीत होने से पहले ये कहां था तो परमात्मा में इन विकल्पों से रहित था। इसका मतलब क्या हुआ, शुद्ध एक परमात्मा था, स्वगत विजातीय और सजातीय भेद से रहित था। परमात्मा परमात्मा दो परमात्मा होते तो वहां कौन सा भेद माना जाता है, सजातीय भेद माना जाता है। जैसे अभी सजातीय भेद यहां विद्यमान है, मनुष्य मनुष्य में एक से दूसरे की भिन्नता, इसको क्या बोलते हैं, सजातीय भेद। और मनुष्य और कुर्सी में एक दूसरे में भिन्नता, ये कौन सा भेद मानते हैं, विजातीय। कुर्सी भिन्न है, मनुष्य भिन्न है, कुर्सी कुर्सियों में जो भिन्नता है, एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी की भिन्नता, सजातीय भिन्नता। एक ही कुर्सी में हत्था, उसके टांग, उसकी हत्था, उसके पीछे का पीठ का, ये क्या है, स्वगत भेद। ये देख लो, एक ही कुर्सी में हत्था अलग है हाथ रखने वाला, और उस कुर्सी के चार टांग अलग हैं, चारों टांगों में से भी चार अलग अलग हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्वगत भेद। ये कुर्सी अकेले रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा, और कुर्सियों के साथ रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा, अन्य मनुष्यों के साथ रहेगा तो भी निर्विकल्प नहीं रहेगा। तो वह सावयव होने के कारण, सापेक्षित होने के कारण यह निर्विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कुर्सी है अभी स्वगत भेद के रूप में प्रतीत होने वाला कुर्सी, मूल पेड़ में जिस समय यह लकड़ी के रूप में था, क्या यह कुर्सी स्वगत भेद के रूप में था वहां, है? टांग अलग, हत्था अलग, पीठ का अलग, इस रूप में था, है? तो वो क्या वहां कुर्सी वो कुन रूप किस रूप में था, निर्विकल्प के रूप में था। यदि कुर्सी उस पेड़ में न होता तो फिर उस पेड़ से कुर्सी न बनती। पानी में कुर्सी निर्विकल्प रूप में था कि नहीं, बोलो, पानी में कुर्सी निर्विकल्प के रूप में था कि नहीं था, तो फिर पानी में से लकड़ी निकालो, लकड़ी में से कुर्सी बना लो। अब उसकी पानी में निर्विकल्प कुर्सी था तो उसको निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पानी को जमीन में लगाओ, उसमें बीज डालो। अरे बाबा, वो सब पानी से नहीं बीज से उत्पन्न हुआ है। हर कार्य अपने कारण में निर्विकल्प के रूप में रहता है, हर कार्य अपने कारण में रहता है, लेकिन निर्विकल्पक में रूप में रहने के कारण द्वैत सिद्ध नहीं होता, ये ध्यान लेना। सांख्य दो कारण को मानते हैं, वेदांत एक कारण को मानता है। और ये कारण को मानने के कारण कार्य कारण में पहले से रहता है, जैसे तेल तिल में पहले से रहता है, तेल सरसों में पहले से रहता है, तभी उस सरसों को तिल को फेलने के बाद तेल प्रकट होता है। प्रकट होने से पहले वहां अव्यक्त रूप में था, प्रकट हो गया तो व्यक्त हो गया। कुर्सी लकड़ी में अव्यक्त था, निर्विकल्प था, लकड़ी से कुर्सी व्यक्त हो गया, सविकल्प हो गया। तो सविकल्प और निर्विकल्प ये दो अवस्था हैं पदार्थों की। कार्य के रूप में सविकल्प के रूप में प्रतीत होता है, वही पदार्थ कारण में निर्विकल्प के रूप में रहता है। कैसे? तो दृष्टांत दिया, जैसे पूरा का पूरा वट वृक्ष छोटे से वट बीज के अंदर निर्विकल्प के रूप में संस्कार के रूप में रहता है, बीज मात्र रहता है, और उसी बीज में से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से सारा का सारा वृक्ष प्रकट होता है। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में एकमात्र सदाशिव परब्रह्म परमात्मा सजातीय विजातीय स्वगत विकल्प रहित था, और वो परमात्मा में से ये जगत अंकुर की तरह पैदा हो गया और इस जगत वृक्ष के रूप में दिख रहा है। इसलिए गीता में जगत को वृक्ष का ऊर्ध्वमूल मदशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् चंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद सवेदवित्। आगे मूल वेदांत के हिसाब से अब इस श्लोक का विचार करेंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।